नमस्कार, CSIR CFTRI की अपनी पाक्षिक ऑडियो डाइजेस्ट थाली टेल्स में आपका स्वागत है। थाली टेल्स आपको पोषण, खाद्य अनुसंधान, स्वच्छता एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। तो लीजिए प्रस्तुत है भाग एक, अंक पांच, 3 मई 2019। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं रिफाइंड ऑयल बनाम कोल्ड प्रेस ऑयल, हानिकारक या लाभदायक, कोलेस्ट्रॉल, अच्छा भी बुरा भी, अनाज के सुरक्षित संग्रहण की पारंपरिक विधियां और चावल की गुणवत्ता के विषय पर CSIR CFTRI की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मीरा से साक्षात्कार। रिफाइंड ऑयल बनाम कोल्ड प्रेस ऑयल, हानिकारक या लाभदायक। हम विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों की बोतलें तथा अलग अलग तरह के तेल पैकेट हर सुपरमार्केट में और तेल विक्रेताओं की दुकानों में पाते हैं। तेल भारतीय रसोई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। दशकों पहले घरों में इस्तेमाल किए जाने वाला तेल स्थानीय रूप से उपलब्ध स्रोतों से पारंपरिक कोल्ड प्रेस विधि द्वारा तैयार किया जाता था। उदाहरण के लिए उत्तरी भारत में सरसों का तेल बहुत आम था, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तिल और मूंगफली का तेल प्रयोग में लाया जाता था। तटीय क्षेत्रों के आसपास नारियल का तेल पसंदीदा विकल्प होता था। इसके अलावा गाय के दूध से बने घी को भी सात्विक मानकर इस्तेमाल किया जाता था, जो शुद्ध, पौष्टिक और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। एक लंबे समय तक ये गुणकारी चीजें काफी अच्छी थी और किसी को उनके दैनिक उपयोग में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फिर दिल की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल की चिंताओं और मोटापे के तनाव के डर से लोगों की प्रवृत्ति में भारी बदलाव आया। जैसे कि आप जानते हैं, आज हमारे दैनिक आहार में तेल और वसा सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। यह इसलिए क्योंकि अक्सर अपने मुनाफे के बारे में ही सोचने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने रिफाइंड ऑयल को बाजार में उतारा। सभी रिफाइंड ऑयल कंपनियां आमतौर पर कई स्वास्थ्य दावों के साथ उपभोक्ताओं को आसानी से तेल बेच रही हैं। इन सब के चलते बदलती जीवन शैली और खानपान में सावधानी को ध्यान में रखते हुए सर्वश्रेष्ठ तेल का चयन करना उपभोक्ता के लिए दुविधापूर्ण है। विभिन्न प्रकार के तेल जब सामने मौजूद हों, तो हृदय, वजन, मधुमेह, फोर्टिफाइड लेबल, कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस वसा, इन सब को ध्यान में रखते हुए तेल का चयन करना कितना मुश्किल होता है। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय उपभोक्ता तेल के मामले में एक बड़ी दुविधा में है। जैसे कि हम किस तेल को चुने, क्या हम पूरी तरह से उन लेबल पर छपी बातों पर भरोसा कर सकते हैं? क्या कोई तेल हमारे लिए स्वस्थ हो सकता है? क्या सस्ते तेल हमारे हृदय के लिए हानिकारक है? क्या ये हमारे शरीर में मोटापा ला सकते हैं? क्या महंगे तेल का मतलब यह समझें कि ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? ये कभी न खत्म होने वाले सवाल हैं। क्या हम आपको एक अच्छे तेल का चुनाव करने में मदद कर सकते हैं? एक जिम्मेदार उपभोक्ता के रूप में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें, तो उससे हमें और हमारे आसपास के लोगों को सही चुनाव करने में मदद मिलेगी। कोई भी प्रमुख तेल ब्रांड लें, उनमें से अधिकांश रिफाइंड यानी परिष्कृत रूप में आते हैं, जिसका अर्थ है कि वे रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला से गुजरे हैं। इन प्रक्रियाओं में अंतिम उत्पाद देने के लिए लगभग 270 डिग्री सेल्सियस तक हीट यानी कि गर्म करना भी शामिल है। प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग करने के बाद तेल अपने कई लाभकारी गुण खो देता है और बदले में मुक्त कण यानी कि फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड रिफाइंड ऑयल में ब्लीच कंपाउंड तथा एंटीफॉर्म्स के कुछ न कुछ अवशेष रह ही जाते हैं। तेल को खराब होने से रोकने के लिए कुछ रसायन भी मिलाए जाते हैं। इनका लंबे समय तक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन ये जान लें कि रिफाइंड ऑयल अगर उचित मात्रा में लिया जाए तो इससे कोई खतरा नहीं है। इन तेलों का इस्तेमाल उन व्यंजनों को बनाने के लिए किया जाता है जिन्हें हल्का फ्राइंग की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सलाद, ड्रेसिंग, मैरिनेट तथा अन्य बिना ताप के और कम ताप में खाना पकाने की प्रक्रियाओं के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। भारतीय व्यंजन पश्चिम व्यंजनों से बहुत अलग हैं। हम अधिकतर खाना बनाते समय उच्च तापमान का उपयोग करते हैं, अधिकांश समय 170 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर। हाल ही में किया गया एक शोध भारतीय व्यंजनों में रिफाइंड तेल के उपयोग से बचने का सुझाव देता है, क्योंकि हमारे यहाँ नाश्ता, भोजन के अलग अलग डिश, स्नैक्स और मिठाई सब उच्च तापमान पर ही बनाए जाते हैं। खाना पकाने की प्रक्रिया विटामिन ई और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स को नष्ट कर देती है। इसके साथ ही प्यूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तथा प्राकृतिक स्वाद को भी प्रभावित करती है। यह विषाक्त यौगिक यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड्स भी उत्पन्न करता है जो हृदय तथा रक्तवाहिकाओं संबंधित यानी कि कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों या कैंसर के पनपने का कारण हो सकता है। निसंदेह रिफाइंड कुकिंग तेलों की तुलना में कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक अच्छा और स्वस्थ विकल्प, विशेष रूप से तेल में तले जाने वाले लोकप्रिय व्यंजनों के लिए नारियल, सरसों का तेल और घी का उपयोग अच्छा है, क्योंकि उसमें संतृप्त वसा यानी कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं, जो उनको अधिक तापमान पर भी स्थिर रहने में मदद करते हैं। और फिर हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि उचित मात्रा का ध्यान रखना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जब भी संभव हो स्वास्थ्यवर्धक खाना पकाने के तरीकों का उपयोग करें, जैसे कि डीप फ्राइंग की जगह स्टीमिंग, हल्का फ्राइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग इत्यादि। और फिर से जब ये प्रश्न उठता है कि हमें कौन सा तेल खरीदना चाहिए, तो आपको बता दूं कि किसी भी तेल को खरीदने से पहले अब तक हमने जो चर्चा की उन महत्वपूर्ण बातों से अवगत रहें और तेल के पैकेट पर लगे लेबल को अच्छे से जांच लें। एक ही तेल सब प्रकार के व्यंजनों को बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता, तो अपनी रसोई में विभिन्न प्रकार के तेल शामिल करें और स्वादिष्ट तथा स्वस्थ भोजन का आनंद लें।
कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी और बुरा भी। आज हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? यह कुछ और नहीं बल्कि एक छोटा सा पदार्थ है जो हमारे शरीर में मौजूद है। जी हाँ, किसी भी आहार के प्रति जागरूक व्यक्ति से यदि पूछें तो हमारे अंदर डर पैदा करने वाले ऐसे केवल दो ही शब्द हैं। वे हैं कैलोरी और कोलेस्ट्रॉल। कैलोरी से मोटापा बढ़ने और मधुमेह के रोग का डर होता है, तो कोलेस्ट्रॉल से उक्त रक्तचाप और फिर हृदय रोग या स्ट्रोक का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इतना भी बुरा नहीं जितना कि हम सब समझते हैं? इसकी आवश्यकता कुछ हद तक सबको होती है, लेकिन फिर कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक मोम जैसा पदार्थ है। इसका शाब्दिक अर्थ है पित्त में स्टेरॉल का होना। ग्रीक भाषा में कोले का अर्थ पित्त होता है और स्टीरियो का मतलब होता है ठोस। प्रत्यय ओएल का मतलब है कि यह एक कार्बनिक अल्कोहल है। जैसा कि इस शब्द का वर्णन किया गया है, कोलेस्ट्रॉल पित्त द्रव में पाया जाने वाला एक ठोस पदार्थ है। जब रक्त में इसका स्तर बढ़ने लगता है तो यह पित्त से अलग होकर रक्त वाहिकाओं में जमा होने लगता है। समय के साथ ये जमाव बढ़ते रहते हैं तथा धमनियों में रक्त प्रवाह को बाधित करते हैं और यही उच्च रक्तचाप का कारण बनते हैं। इस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। कभी कभी ये जमाव अचानक एक थक्का यानी क्लॉट बन जाते हैं जो कि दिल का दौरा या स्ट्रोक का कारण बनते हैं। क्या आप जानते हैं औद्योगिक देशों में होने वाली 1/4 मौतों का कारण कोरोनरी हृदय रोग होता है और यही है हमारे दुश्मन। फिर भला ये हमारे शरीर में क्यों है? आपको ये सवाल जरूर सता रहा होगा। बिल्कुल आपको बताऊंगा, क्योंकि यह आवश्यक है। असल में हम अपने आहार से कोलेस्ट्रॉल प्राप्त नहीं करते, यह हमारे शरीर में ही बनता है। स्वस्थ कोशिकाओं के निर्माण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल होता है। पित्त अम्ल कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है। हमारे शरीर में हड्डियों को विटामिन डी की आवश्यकता होती है जो वसा से ही शरीर में बनती है। और यह कैसे बनता है? जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी का प्रणेता है, यानी इसमें ही विटामिन डी बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। स्टेरॉयड हार्मोन जो दिन भर हमारी गतिविधि को संचालित करता है वास्तव में कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं। तो अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं तो स्टेरॉयड नहीं। अब कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा क्यों है? वह इसलिए क्योंकि जिस वसा को हम भोजन में लेते हैं कोलेस्ट्रॉल उसी वसा का उपयोग करके हमारे शरीर में संश्लेषित होता है। इसके अलावा हमारे आहार में मौजूद कोलेस्ट्रॉल भी शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से मिल जाते हैं। आहार कोलेस्ट्रॉल पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जिसमें मीट, पोल्ट्री, मछली, अंडे और दूध उत्पाद शामिल हैं। याद रखें, पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थों में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बल्कि वे केवल स्टेरॉल्स प्रदान करते हैं जो वसा के साथ मिलकर शरीर में कोलेस्ट्रॉल में बदल जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक क्यों होता है? तो श्रोताओं, उच्च कोलेस्ट्रॉल या तो आनुवंशिक हो सकते हैं या अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल लगातार बनता रहता है और इसका उपयोग भी लगातार होता रहता है। लिवर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोलेस्ट्रॉल लिवर में पचता है और पित्त के माध्यम से उत्सर्जित होता है। दोनों के बीच का संतुलन रक्त में कोलेस्ट्रॉल के अनावश्यक जमाव को रोक सकते हैं। उत्पादन और उपयोग के बीच के संतुलन को मापने के लिए आमतौर पर LDL कोलेस्ट्रॉल और HDL कोलेस्ट्रॉल के अनुपात को देखा जाता है। LDL कोलेस्ट्रॉल वह कोलेस्ट्रॉल है जो रक्त में मौजूद होता है। HDL कोलेस्ट्रॉल वे हैं जो रक्त से बाहर भेजे जाने के लिए तैयार हैं। तो दोनों के बीच का अनुपात दिखाता है कि स्टॉक का कितना उपयोग किया जा रहा है। LDL कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर को स्वास्थ्य के लिए बुरा कहा जाता है और इसीलिए LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है और HDL इसको अच्छा माना जाता है। तो अब आप जानना चाहेंगे कि हम इसे किस प्रकार नियंत्रण में रख सकते हैं। तो इसका जवाब सरल है और इसका एक ही विकल्प है, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और आवश्यकता पड़ने पर दवा लेकर कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखा जा सकता है।
अनाज का संग्रहण। फसल की कटाई के बाद बड़ी मात्रा में प्राप्त अनाज और दालों को संचित करना एवं उन्हें कीट से सुरक्षित रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हालांकि कीटनाशक रसायनों के प्रयोग से अनाज को कीटों से सुरक्षित रखा जा सकता है, परंतु ये पर्यावरण के लिए असुरक्षित होते हैं तथा इनके लगातार प्रयोग से ये खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में सम्मिलित होकर हमारे भोजन का हिस्सा बन जाते हैं। ये तो बात हुई अनाज के संग्रहण की, लेकिन सभी अनाजों को गोदामों में नहीं रखा जाता। भारत में उपजाए जाने वाले अन्न की फसलों में से लगभग 60-70% फसलों को घरों में ही देसी तरीकों से रखा जाता है और उनको कुछ पारंपरिक तकनीकों की मदद से सुरक्षित किया जाता है। स्वदेशी तकनीक हमारे बुजुर्गों की बुद्धिमत्ता और अनुभव तथा पर्यावरण के प्रति उनकी गहरी जानकारी का नतीजा है, जहां परिवार के हर पुरुष को विरासत में पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है, वहीं घर की हर स्त्री धरोहर के रूप में उनके बड़े बुजुर्गों का मूल्यवान पारंपरिक ज्ञान प्राप्त करती है। हमारे पूर्वजों ने कई प्राकृतिक स्रोतों से अनाज संग्रहित करने के तरीकों को आजमाया एवं परखा है। बिना कारण जाने हमारी दादी नानियां नीम के पत्तों को रागी के बोरे में रखती थीं और इस प्रक्रिया का बड़ी ही निष्ठा के साथ पालन करती थीं। इस खंड में हम इसी तरह के परंपरागत ज्ञान की ओर नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। क्या पता हमें इन्हीं से पर्यावरण हितैषी अनाज संग्रहण के कुछ उपाय मिल जाए। सन ड्राइंग या सौर ऊर्जा संरक्षण शायद संरक्षण और संग्रहण की सबसे पुरानी तकनीक होगी। फसल को सुखाकर उसकी नमी की मात्रा को लगभग 10-12% तक लाना किसानों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य प्रक्रिया है। इससे न केवल अलग अलग समय पर पनपने वाले कीटों का नाश होता है बल्कि समय से पहले होने वाले अंकुरण को भी रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा महंगा उपाय है नमक का प्रयोग। नमक के साथ मिलाने पर दालें जैसे अरहर चना मूंग आदि को 6-8 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। नमक में जल को सोख लेने का गुण होता है, साथ ही नमक खुरदुरा होता है तथा कीटों की त्वचा पर रगड़ का प्रभाव देने की शक्ति रखता है जिसके कारण यह एक कीटनाशक है और यह अनाज पात्रों में कीटों को आने से रोकता है, इसलिए इसे अनाज के पात्रों में रखा जाता है। क्या आप जानते हैं राख भी दालों की सुरक्षा में सहायक होती है। दालों को यदि राख के साथ मिला दिया जाए तो विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रभाव रोका जा सकता है। नमक की तरह ही राख भी अनाज के भंडार में नमी की मात्रा को कम करती है। हालांकि राख नमक के मुकाबले बहुत महीन होती है पर उसमें मौजूद सिलिका कीटों को दूर रखता है। इसके अलावा राख फफूंदी को भी उपजने नहीं देती। अब बात करते हैं हल्दी के प्रयोग और उससे जुड़े पारंपरिक उपयोगों की। हल्दी की पतली परत काफी लंबे समय तक अनाज और दालों की सुरक्षा करने में सक्षम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हल्दी विषैली है। वास्तव में हल्दी की तेज गंध के कारण कीड़े अनाज से दूर रहते हैं। एक और विश्वसनीय पारंपरिक नुस्खा है नीम का प्रयोग। रागी और धान को सूखे नीम के पत्तों के साथ मिलाने से कुछ कीटों का नाश संभव है, पर इसके लिए नीम के पत्तों का छाया में सूखा होना आवश्यक है। नीम के पत्तों में पाया जाने वाला रसायन एजाडिरैक्टिन कीटों को दूर रखता है तथा एंटीफंगल पदार्थ की तरह काम करता है। दालों पर नीम के तेल की परत लगाने से कीटों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और इससे कीटों का आक्रमण प्राथमिक चरण में ही रुक जाता है। जूट की बोरियों को नीम के बीज के सत्व में डुबोकर उन्हें छांव में सुखाकर इसके बाद उसमें अनाज डालकर रखने से भी यही प्रभाव मिलता है। नमक अनाज को केवल कीटों के प्रभाव से बचाता है, वहीं अगर नमक को मिर्च के साथ मिला दिया जाए तो कीटों को मारा भी जा सकता है। दालों को नमक और मिर्च पाउडर के साथ मिलाने पर मिर्च का तीखा प्रभाव कीटों को दूर रखता है। नीम के पत्तों और मिर्च के सूखे पत्तों को मिलाने से इन दोनों का संयुक्त प्रभाव मिलता है। कपूर अथवा कर्पूर का उपयोग भी एक पुरानी प्रक्रिया है। 5 किलो अनाज के लिए केवल 2 ग्राम कपूर ही काफी होता है। कपूर की तेज गंध कीटों के लिए प्रतिकारक होती है क्योंकि कपूर समय के साथ भाप में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसके साथ काली मिर्च के कुछ दाने भी रखे जाते हैं। पोंगामिया पिनाटा, जिसे कन्नड़ा में हुंगे मरा कहते हैं, उसके पत्तों का प्रयोग पारंपरिक तौर पर धान के संग्रहण के लिए किया जाता है। पोंगामिया के पत्तों की गंध बहुत ही तेज होती है जिसके कारण इन पत्तों को धान के बोरे के बीच में रखा जाता है जिससे धान में उपजने वाला घुन तथा मौत दूर रहते हैं। करंजिन एक प्रकार का रसायन है जो कि पोंगामिया पिनाटा में मिलता है, वो और पोंगामिया पिनाटा के बीज कीटनाशक का काम करते हैं। 30 ग्राम अदरक के राइजोम या प्रकंद पाउडर को अगर 1 किलो दाल के साथ मिला दिया जाए तो दालों को लंबे समय तक रखा जा सकता है। अदरक में मौजूद एल्कलॉइड्स, एंथोसाइनिंस, फ्लेवोनॉइड्स और टैनिंस कीटों को दूर रखते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जो अदरक हमें खाने की ओर आकर्षित करती है, वहीं यही अदरक कीटों को इस खाने से दूर रखती है। आखिरी पर सबसे महत्वपूर्ण, हमारी अपनी तुलसी।
भुट्टे के दानों में तुलसी के सूखे पत्तों और बीज मिलाने से भुट्टे को घुन से बचाया जा सकता है। इसका मूल कारण है कि तुलसी में पैल्मिटिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लिनोलेइक एसिड और स्टेरिक एसिड जैसे फैटी एसिड होते हैं जो कि कीटनाशी की तरह काम करते हैं। तो है ना ये नुस्खे उपयोगी? अब आप आसानी से कम दाम में अपने अनाज का संरक्षण स्वयं ही कर सकते हैं।
चावल की गुणवत्ता का इसकी कुकिंग क्वालिटी पर प्रभाव एक साक्षात्कार। अच्छा बताइए, अगर आपको भूख लगी हो और आपका बाहर जाकर खाने का मन ना हो तो सबसे पहले आप क्या बनाने की सोचेंगे? भाई मैं तो चावल पकाने का ही सोचूंगा। आप जानते ही होंगे कि चावल विश्व भर के लोगों में से एक तिहाई लोगों का पसंदीदा मुख्य अनाज है। इस 5000 वर्ष पुराने अनाज की अपनी कई विशेषताएं हैं। अलग अलग प्रकार के चावल की गुणवत्ता के हिसाब से उनकी कुकिंग क्वालिटी मतलब पकने की गुणवत्ता भी अलग अलग है। चावल की इस गुणवत्ता के बारे में हमने चर्चा की CSIR CFTRI की डॉक्टर मीरा जी से। प्रस्तुत है उनसे हुई चर्चा का हिंदी रूपांतरण। कुछ चावल भली भांति पकाए जा सकते हैं, वहीं कुछ पकने के दौरान चिपचिपे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
चावल के पकने की गुणवत्ता कैसी है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। और चावल पकने के दौरान चिपचिपा हो रहा है या नहीं, इसके भी अनेक कारण हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टार्च दो घटक से बना होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज में कार्बन के अणु सीधी श्रृंखला में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि एमाइलोपेक्टिन में शाखा के रूप में। ये एमाइलोज चावल के पकने की गुणवत्ता को विशेष रूप से प्रभावित करता है। यदि एमाइलोज की मात्रा कम है तो हम इसे वैक्सी चावल कहते हैं, क्योंकि पकाते समय यह वैक्स यानी कि मोम की तरह चिपचिपा हो जाता है। ये चावल जो है वो पूर्वी देशों जैसे कि जापान, चीन और हमारे उत्तरी पूर्वी राज्यों के लोगों द्वारा बड़ा पसंद किया जाता है। दूसरी ओर अगर एमाइलोज की मात्रा अधिक है तो चावल थोड़ा खिला खिला सा बनता है और पकाते समय ज्यादा चिपचिपा नहीं होता। ये चावल हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में अधिक पसंद किया जाता है। उसके साथ ही इसका एक कारण चावल की अवस्था भी है। आपने सुना ही होगा, पुराना चावल, नया चावल। नए चावल में पकाते समय चिपचिपा होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि पकाते समय इसके कई तत्व उस पानी में आ जाते हैं जिसमें कि इसे पकाया जा रहा होता है। जैसे जैसे चावल पुराना होता जाता है, उसमें उपस्थित जो स्टार्च है वो पानी को अपने ही साथ अवशोषित करके बांधे रखता है और अपने तत्वों को बाहर नहीं आने देता। इसीलिए ये पुराने चावल पकने के दौरान चिपचिपे नहीं होते। और इसी विशेषता के कारण चावल जितना अधिक पुराना होगा उसके दाम भी उतने ही अधिक होंगे। चावल की अच्छी गुणवत्ता होने का और साथ ही महंगा होने का एक और कारण हो सकता है, और वह है इसका प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग। जैसे पार बॉइलिंग या आंशिक रूप से चावल को उबालना या फिर चावल को भाप देना। इस तरह से जो चावल मिलते हैं वो भी बहुत अच्छे से पकते हैं और पकने के बाद चिपचिपे नहीं होते।
चावल की अवस्था बढ़ना, इसका क्या तात्पर्य है और इसका क्या कारण है कि पुराने चावल ही खाने के लिए अधिक पसंद किए जाते हैं?
अवस्था बढ़ाना मतलब कटाई के तुरंत बाद चावल का सुरक्षित भंडारण करना। असल में कटाई के तुरंत बाद कई कारणों से चावल की मिलिंग नहीं की जा सकती। अब चावल उत्पादन करने वाली इंडस्ट्रीज का जो मुनाफा है वो मिलिंग के बाद प्राप्त हुए चावल की आकृति और आकार दोनों पर निर्भर होता है। जैसे कि अगर पूरा साबुत चावल या 3/4 आकार का दाना हो तो अधिक मुनाफा आता है। छोटे दाने या टूटे हुए दाने अधिक पसंद नहीं किए जाते। अब क्या होता है कि जब आप कटाई के तुरंत बाद मिलिंग करते हैं तो मिलिंग के बाद बहुत ज्यादा छोटे और टूटे हुए चावल मिलते हैं, जो चावल के व्यापारियों के लिए अच्छी बात नहीं। इसीलिए कटाई के बाद धान को कम से कम 3 महीने के लिए रखा जाता है और फिर इसकी मिलिंग की जाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि चावल ही एकमात्र ऐसा अनाज है जिसके दानों को हम पूरा पूरा लेते हैं, जबकि अन्य अनाजों के दानों में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए गेहूं। गेहूं या तो सूजी या दलिया या आटे के रूप में हम खाते हैं, ना कि पूर्ण दाने के रूप में। तो चावल ही एक ऐसा अनाज है जिसमें मिलिंग के बाद अच्छी गुणवत्ता वाले दाने मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर नए चावल में एक तो नमी अधिक होती है, दूसरा ये नमी तथा अन्य महत्वपूर्ण तत्व चावल के दाने के प्रत्येक भाग में समान रूप से वितरित नहीं रहते। इस प्रकार इसके तत्वों के असमान रूप से वितरित होने के कारण इसकी मिलिंग ठीक से नहीं हो पाती और सही परिणाम नहीं मिलते। तो पहले चावल की अवस्था को बढ़ाना और फिर मिलिंग करना, इसका महत्वपूर्ण और दूसरा कारण है इसके पकने की प्रकृति। नया चावल अधिक चिपचिपा होने के कारण आप इसे दाल या सांबर के साथ मिलाकर नहीं खा सकते और ना ही आप इससे अच्छा पुलाव बना सकते हैं। बासमती चावल के पैकेट्स पर अक्सर आपने यह लिखा देखा होगा, एज्ड फॉर 3 मंथ्स, एज्ड फॉर 6 मंथ्स और कभी कभी एज्ड फॉर 2 ईयर्स। जितना अधिक चावल को संग्रहित करके इसकी अवस्था को बढ़ाया जाएगा, उतनी ही इसके पकने की गुणवत्ता अच्छी होगी। मतलब पकने के बाद चावल खिला खिला दिखेगा, पानी में इसके तत्वों की हानि कम होगी और पकने के बाद वह अपना अधिकतम आकार ले लेगा, साथ ही चिपचिपा भी नहीं होगा।
क्या हम कृत्रिम रूप से नए चावल को पुराना और अच्छी गुणवत्ता का बना सकते हैं?
जी हाँ, ऐसा किया जा सकता है। यह चावल को भाप देकर किया जाता है। इसके अंतर्गत चावल को 15 मिनट या इससे अधिक समय के लिए भाप दिया जाता है। यह तरीका सबसे पहले 1956 में CFTRI द्वारा ही विकसित किया गया था। उस वक्त धान की कटाई के समय उसमें नमी की मात्रा 22-24% तक होती थी। अब कृषि तकनीकों में प्रगति होने के साथ आज के समय में कटाई के वक्त धान में नमी की मात्रा जो है वो 15-18% तक हो गई है। इस प्रकार इसकी मिलिंग की गुणवत्ता थोड़ी प्रभावित होती है। हालांकि इसके कुछ नुकसान हैं, पर आज के समय में व्यावसायिक स्तर पर CFTRI द्वारा विकसित इस विधि से चावल की अवस्था को बढ़ाया जाता है।
क्या हम पुराने चावल और नए चावल में अंतर पता कर सकते हैं?
जी हाँ, पर इसके लिए आपको कुछ टेस्ट करने होते हैं। फिर उन सभी के परिणामों को एकीकृत करके पता लगाया जा सकता है कि चावल पुराना है या नया। जैसे कि इसके पकने की गुणवत्ता कैसी है उसका अध्ययन करना, फिर स्टार्च टेस्ट और उनका अध्ययन, पके हुए चावल के कणों को सूक्ष्मदर्शी से जांचना। इन सभी टेस्ट का जब एक साथ अध्ययन किया जाता है तब हमें पता लगता है कि चावल नया है या पुराना।
इन सब के अलावा क्या कोई आसान या सामान्य तरीका है जिससे कि हम चावल की अवस्था का पता लगा सकते हैं?
जी नहीं, जहां तक मैं जानती हूँ ऐसा कोई आसान तरीका नहीं है।
इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो श्रोताओं, यह था हमारी थाली टेल्स का 5वां अंक। आशा है आप सबने इसका आनंद उठाया होगा। इसकी पटकथा लिखी है सुश्री नम्रता वारकेकर, डॉक्टर J.R. मंजुनाथ और सुश्री अक्षता ने। हिंदी रूपांतरण कर अपनी आवाज दी है श्री राजदीप सिंह, सुश्री सुरुचि नौटियाल, सुश्री प्रतिभा और सुश्री वंदना ने। YouTube और संगीत के लिए श्री शिव गणेश के प्रति हमारा आभार। थाली टेल्स CSIR CFTRI मैसूरु द्वारा तैयार और निशुल्क वितरित की जाने वाली एक पत्रिका है। आप थाली टेल्स को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। श्रोता खाद्य और उससे संबंधित मुद्दों पर अपने प्रश्न और सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से सीधे 9449120618 पर भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.cftri.com पर रजिस्टर कर सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप सोमवार से शुक्रवार तक 9449120618
पर कॉल भी कर सकते हैं। थाली टेल्स के अगले अंकों में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। हमारी अगली मुलाकात 2 सप्ताह बाद होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।